कृष्णा कृष्णा हरे हरे, पालन ही रात नहीं, हरे राम पंडर नहीं ना, राम राम हरे हरे. इथे काही मला ठेवायला पुस्तक ठेवायला काहीच नाही. इवन काय आहे, तू टेबल देशील का थोड्या वेळ आतीचा, है ना? कोणाला? हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बापरे, आता खूप ॲडजस्टमेंट करावं लागेल माईक आणि हे बघू वाजवतो आहे. अरे हे
असं करा की त्यांना वाजवतो का,
थोड्या वेळेनंतर मग काढायला लागेल. जय श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज गोवर्धन की. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल. जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल. जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jayo Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jayo Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vishnupat Paramhansa Parivrajaka Acharya Ashtodarsha Shishimad His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganah Ragunathanvitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Suratau Pangor Mama Manda Matergati Matsarvasva Padambojo Radha Madanamuhano Divyad Vrindaranya Kalpadrimada Srimad Ratnagara Simhasanastau Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishthalibhisevyamano Smarami Sriman Rasarasarambhi Vamshi Vata Tatastita Karshan Venu Swaner Gopi Gopinathaya Shriyestunaha Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnupadaya कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवे देवे दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वासही में हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं श्री वृंदावन धाम श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति एनओडी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में एक साधक की भक्ति में जैसे प्रगति होती है तो वो बताते हैं कि किस तरह अपने इंद्रियों का संयम कर भक्ति के यम नियमों को पालन कर भक्तों के साथ अच्छे व्यवहार कर नाम में रुचि प्राप्त करने के पश्चात उसको वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है और जब उस धाम में अकेले नहीं रहना है तो भक्तों के संघ में निंदादि शून्य इप्सित संग लब्ध्वा तो जब ऐसे भगवान के प्रेममयी भक्तों के संघ में रहकर हम वृंदावन में रहते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मथुरापुरी बहुत विशेष है उसमें विशेष है श्री गोवर्धन और उसमें भी विशेष है श्री राधा कुंड। तो गुरु महाराज के श्रील प्रभुपाद की कृपा से देखिए हमारा कितना सौभाग्य है कि हम आज गोवर्धन के तट पर बैठे हैं और उसी पवित्र स्थान पर जहाँ पर हमारे परम आचार्य श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जिन्हें भजन किया है जहाँ पर भगवान ने उन्हें स्वयं साक्षात दर्शन भी दिए हैं और स्वप्न में भी भगवान उनके आए हैं। तो जैसे भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश किए तो वो भगवान की वाणी है शुद्ध वाणी है भगवान के गीत है भगवद गीता तो हम सभी लोग उसका प्रयास करते हैं पढ़ने का। पर अगर हम आज ये जो हमारे आचार्य है श्री माधवेंद्रपुरी पाद इनके बारे में कहेंगे तो वैसे तो हमारी कोई योग्यता ही नहीं है क्योंकि वे इतने महान भगवान के भक्त हैं कि साक्षात भगवान स्वयं उनका गौरव उनका गुणगान करते हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद के भगवान के साथ जो लीलाएं हुई है वह चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला चौथा अध्याय बहुत ही सुंदर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला को लिखते हैं और यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं इस लीला को वर्णन कर रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितने महान आचार्य वे हैं और भगवान अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद उनका गौरव किए है तो हमारी क्या योग्यता है। तो भगवान से हमारी कोई तुलना है। एक तो जीव जो है भगवान का एक अंश मात्र है और उसमें से भी ये बद्ध जीव तो क्या वो भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में जानेगा? पर आप सभी वैष्णवों की आशीर्वाद की कामना करता हूँ, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोकों में चैतन्य चरितामृत को वर्णन किए हैं, उन्हीं के श्लोकों में और थोड़ा हिंदी तात्पर्य हम प्रयास करेंगे इन सुंदर मधुर लीला को सुनने के लिए श्रील माधवेन्द्रपुरी पाद के। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह, आप सभी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लेने के पश्चात कहाँ जाना चाहते हैं? वृंदावन। अन्येर हृदय मन मोरमन वृंदावन, वह वृंदावन में जाना चाहते हैं। पर भक्त जो है भगवान के साथ भी चीटिंग करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को जब गंगा दिखती है तो कहते हैं यही यमुना है। चैतन्य महाप्रभु गंगा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि दूसरी ओर से श्री अद्वैताचार्य नाव में बैठ के आ रहे हैं। अरे बोलते हैं अद्वैताचार्य कब वृंदावन में आ गए? तब जाके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि वो वृंदावन नहीं जाए, वो कहाँ पर आए हैं? शांतिपुर में। तो फिर जब अद्वैताचार्य उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे तो अभी वृंदावन जाना है। तो बहुत ही सुंदर यह लीला है भगवान की कि शची माता और भक्तों के अनुरोध पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि ठीक है, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो नवद्वीप और जगन्नाथपुरी ये एक ही घर के दो कमरे के समान है, और माता शची सोचती है कि अगर पास में ही जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो हमेशा मुझे सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे पता चल सकेगा। तो मातृभक्त शिरोमणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रयाण कर रहे हैं अभी? पूर्व की ओर, उड़ीसा जाने के लिए या जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो यही वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जाते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, तो यह एक स्थान है पुरी में प्रवेश करने के पूर्व जिसका नाम है रेमुणा। तो ये रेमुणा बहुत ही पवित्र स्थल है। जैसे कहते हैं रेमुणा आता है बालासोर या बालेश्वर कहते हैं, हाँ, तो हम सुनते हैं कि कहते हैं कि ये भगवान का ही क्षेत्र है, लीला क्षेत्र, क्योंकि बाल ईश्वर से ही बालासोर आया है। और बाल ईश्वर है कौन? तो हम देखेंगे कोई भी अन्य देवी देवताओं का भी अगर यहाँ पर पृथ्वी में कुछ कारणवश उनकी पूजा विग्रह होते हैं या भगवान के आदि रूप भी, पर बाल रूप में किसकी सेवा होती है? गोपाल की ही होती है। मतलब भगवान का ही क्षेत्र है बालासोर, और उसी में क्षेत्र है रेमुणा, बहुत ही पवित्र क्षेत्र रेमुणा। तो ऐसा कहते हैं ये रेमुणा उसका अपभ्रंश है, रमण, जहां पर भगवान अपनी लीलाओं में रममाण होते हैं, ऐसा वह स्थान है रेमुणा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ इस रेमुणा क्षेत्र में आते हैं, और देखिए किस तरह सुंदर परंपरा भगवान स्थापित किए हैं। भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी है, सभी अवतारों के स्रोत है। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को दंडवत करते हैं, गोपीनाथ की जो माला है भगवान के गले में पड़ती है। और बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ गोपीनाथ का दर्शन करते हैं और खीर खाने की जो है इच्छा व्यक्त करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों खीर खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं? क्योंकि जैसे आप सभी लोग परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ या कई अन्य यात्रा में जाते हैं तो हम उसका महात्म्य सुनते हैं ना, तो फिर हमें वो खीर के प्रति और आकर्षण बढ़ता है। वैसे भगवान अपने स्वयं जीवन में भी दिखाए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस खीर चोर गोपीनाथ की लीला स्वयं अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुने थे। इसलिए जब वो आते हैं, खीर को स्वीकार करते हैं और सभी भक्तों को बांटते हैं, तो सभी भक्त जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष इच्छा प्रकट करते हैं कि कृपया करके आप हमें इस लीला के बारे में बताइए। तो यह वह स्थान है जहां पर भगवान श्री माधवेन्द्रपुरी पाद के साथ बहुत सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो जो खीरचोर गोपीनाथ है वो तो है कहां पर? बालासुर में, रेमुणा में। पर यह लीला का जो प्रारंभ है वह वृंदावन से ही होता है, और अभी हम उसी स्थान पर बैठे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण माधवेन्द्रपुरी पाद के साथ जो है लीला का आदान प्रदान किए हैं। और गुरु महाराज की कृपा से देखिए उसी तरह का वातावरण निर्माण हुआ है। अनियोर ग्राम है, मुखारविंद है, यहाँ पर गोपाल खड़े हैं, गिरधारी गोपाल, और यहीं पर गोविंद कुंड है, और बाजू में ही श्री माधवेन्द्रपुरी पाद की जो भजन स्थली है जहां पर भगवान उन्हें प्रकट हुए। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है कि माधवेंद्रपुरी पाद का हमारी जो संप्रदाय है उसमें क्या योगदान है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि चार प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है, उसमें से हम जो इस्कॉन है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो वैसे देखा जाए तो श्रील भक्तिदान सिंह ठाकुर एक भजन लिखे है ब्रह्म कृष्ण हिते चतुर्मुख, कि किस तरह हमारा संप्रदाय आया है। तो हम देखते हैं कि हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में है, पर इसी संप्रदाय में लक्ष्मी तीर्थ नाम के आचार्य हुए जिन्होंने श्रील माधवेंद्रपुरी पाद को अपना शिष्य बनाया। और श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जो है वह आचार्य थे जिन्होंने ब्रज भक्ति का जो है अंकुर बोया है। तो इन चारों वैष्णव संप्रदाय में भक्ति तो है, पर जो ब्रज का जो भाव है वो श्रील माधवेंद्रपुरी द्वारा जो अंकुरित किया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो ऐसा कहते हैं, भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो पहले अपने परिकर को प्रकट करते हैं। कृष्ण लीला में देखते हैं देवकी, वसुदेव, यशोदा मैया, नंद महाराज, सभी जो है पहले भगवान के परिकर आते हैं, फिर भगवान एंट्री करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो ब्रज भक्ति को प्रेम रस निर्यास कौरिते आस्वादन, ये जो ब्रज भक्ति को बांटने के लिए आने वाले हैं, उनके पहले अपने एक परिकर को भेजे हैं, उनका नाम है श्रील माधवेंद्रपुरी। तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद के जो शिष्य है वो है ईश्वरपुरी। स्वयं नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी पाद से दीक्षा प्राप्त करते हैं। श्रील अद्वैताचार्य भी जो है भगवान अद्वैताचार्य भी जो है माधवेंद्रपुरी पाद से जो है शिक्षा स्वीकार करते हैं। तो यह है महानता माधवेंद्रपुरी पाद की। तो जैसे ही श्रील माधवेंद्रपुरी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो यहीं पर गोविंद कुंड, आप सब जानते हैं गोविंद कुंड का क्या महात्म्य है। गोविंद कुंड हमारे गोवर्धन लीला का एक प्रमुख स्थली है। जब इंद्र को अपने गलती का एहसास होता है तब वो भगवान को यहाँ पर आकर जो है अभिषेक अर्पण करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है, इसलिए हमने आज जय राधा माधव नहीं गाया, राधा गोविंद देव का नाम लिया, बाद में गोपाल जी का नाम लिया। क्यों? कि दोनों लीला स्थली यहां से संबंधित है। तो ये गोविंद कुंड है जहां पर इंद्रदेव भगवान की क्षमा याचना करते हैं। इसी गोविंद कुंड के तट पर श्रील माधवेंद्रपुरी पाद अपना भजन करते हैं। और माधवेंद्रपुरी पाद ऐसे भजनानंदी, ऐसे साधक थे जो अयाचित वृत्ति से अपना जीवन जीते थे। इसे कहते हैं अजागर वृत्ति भी, पाइथन मेंटालिटी। मतलब क्या? जो अपने आप कोई आएगा तो ही वो खाएंगे, नहीं तो वो कुछ भी प्राशन नहीं करेंगे। तो ऐसे श्रील माधवेंद्रपुरी पाद गोविंद कुंड पर अपनी ध्यान साधना भजन कर रहे थे। और स्वयं गोपाल जो है माधवेंद्रपुरी पाद के पास आते हैं और बहुत सुंदर मटके में उनके लिए दूध लेके आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद देखते हैं कि कोई एक ग्वाल बाल है मेरे पास दूध लेके आया है, तो पूछते रहे आप ये क्यों लेके आए। तो बोलते हैं कि मैं यहाँ का ग्वाला हूँ और हमारे गांव में नियम है कोई भी भूखा नहीं रहेगा, तो अगर कोई कुछ उपवास व्रत कर रहा है तो कम से कम उसे दूध तो प्राशन करना ही है। और बोलते बाजू गांव में ही वहां पर कुएं पे कुछ स्त्रियां जो है उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर है और आपके लिए बहुत सुंदर दूध मैंने भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जैसे ही भगवान को देखते हैं उनके सौंदर्य को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पर अभी उन्हें पता नहीं चला कि वो स्वयं भगवान है। तो दूध को तो ले लेते हैं, उस दूध को स्वीकार करते हैं और अपना भजन करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका भजन इतना अच्छा था कि उस रात भर भी भगवान का भजन करते हैं, पर उनको निद्रा देवी प्रवेश करती है, उनको नींद आती है। क्यों? ये भी भगवान की कृपा से, क्योंकि इसी स्थान पर पहले स्वयं भगवान उनको आकर दूध दिए, बाद में भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं और भगवान उन्हें बताते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी पाद, मैं आप ही के लिए रुका था। तो देखिए भगवान प्रकट होते हैं उनके भक्तों के लिए। गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं उनके भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी पाद जब गोविंद कुंड पर विश्राम लेते हैं तो स्वप्न में वे गोपाल को देखते हैं और गोपाल स्वयं उन्हें कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद, मैं यहीं पर हूं, बाजू में ही एक कुंज में मैं विराजमान हूं। तो भगवान कुंज में कैसे चले गए? तो भगवान खुद स्वयं पूरा वृत्तांत बताते कि देखिए मेरी यहां पर पूजा आराधना होती थी, ये जो गोपाल जी के विग्रह है जो माधवेंद्रपुरी पाद को प्रकट हुए, ये वज्रनाभ द्वारा प्रस्थापित है। तो कहते हैं कि म्लेच्छों का आक्रमण हुआ और पुजारी जी ने मुझे इस कुंज में छुपाकर जो है पुजारी जी चले गए, और मैं कितने सालों से जो है इस कुंज में रह रहा हूं। और देखिए भगवान, मैं ये सोच रहा था कि भगवान कहते कि मुझे गर्मी हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, जबकि गीता में भगवान कहते हैं गामा विश्य च भूतानि धारियामी हम ओजसा पुष्टामी चौषधि सर्वा सोम भूत रसात्मक। एक जगह भगवान कहते हैं कि सभी जो लोग है वो मैं धारण कर रहा हूं। अभी देखिए जो भी ये फल पौधे पत्ते हैं या फल में जो रस है वो कहां से आता है? चंद्र से आता है। सोम भूत रसात्मक, चंद्रमा हमें शीतलता देती है, वो कहां से आती है? कृष्ण से आती है। और वो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे यहां पर जो भी है, क्योंकि कुंज में देखिए अगर हमको कोई अगर ऐसे कूड़े कचरे में डाल दिया, जंगल में अकेले हम गिर जाए, तो भगवान उस तरह का अनुभव कर रहे हैं और अपने भक्त के लिए रुके हैं। और जैसे ही माधवेंद्र पुरीपाद वहां पर आए तो उनसे आदान प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें यहां से बाहर निकालिए। तो भगवान कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण कबे आसी माधव आमा कोरी बेसेवन। बहु दिने तोमार पथक करी निरीक्षण, तो हम भगवान की राह देख रहे हैं, कबे अबे बोलो सही दिन आमार अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? बहु दिने तोमार पथ करी निरीक्षण, भगवान राह देख रहे हैं कि कब मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी आएंगे। कबे कबे आसी माधव आमो करी बेसेवन, सो यहाँ पर भगवान लालायित है अपने भक्त से सेवा स्वीकार करने के लिए। इसलिए भगवान अपने गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, भक्त वश्यता, भगवान कैसे अपने भक्तों के नियंत्रण में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः सर्व, मतलब भगवान सभी के नियंत्रक है और वही भगवान जो है अपने भक्त के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे, देखिए खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे, कृष्णा इज गिविंग इज इंट्रोडक्शन, भगवान खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे माधवेंद्रपुरी को। कहते हैं श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी व्रजे रस्थापित आमी इहार अधिकारी। मेरा नाम गोपाल है, मैं गिरधारी हूँ और मैं व्रज का अधिकारी हूँ। पर आगे वो बताते हैं कि किस तरह यवनों के आक्रमण से जो है पुजारी जी ने है जो मुझे यहाँ पर रखा है। अभी जब ये स्वप्न में माधवेंद्रपुरी पाद ये देखते हैं तो उनका क्या चिंतन है, देखे श्री कृष्ण के देखू नि मुई नारी नु चिनीते एत बलि प्रेमावशे पड़ी लाभो मीते। जैसे ही स्वप्न को देखते हैं तो उनमें दो तरह के भाव प्रकट होते हैं। एक तो उन्हें बहुत हर्ष होता है, किसी को हर्ष नहीं होगा कि भगवान के दर्शन हमें हो गए, जैसे नारद मुनि को भी भगवान दर्शन देते हैं प्रारंभ में, फिर वो दर्शन गायब हो जाते हैं। इसी तरह माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान के दर्शन हुए स्वप्न में, साक्षात भी आए थे पर जान नहीं पाए। क्षण करोध न करी मन कैल अधीर आज्ञा पालन लागी है ला सुस्थिर। पर वह अपने इस हर्ष को और दुख को जो है बाजू में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी, अभी मुझे क्या मिला है? सेवा का धन मिला है, मुझे वो सेवा करनी है। इसलिए वो भूल जाते हैं और तुरंत जो है भगवान का क्या आदेश है, मुझे वहां से निकालिए, तो भगवान को वहां से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो एक ब्रज के संत है बहुत सुंदर, कहते हैं कि देखिए भगवान यहाँ पर माधवेंद्रपुरी पाल के स्वप्न में आए तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, कहते कि ब्रज में जो स्वप्न है ना वो भी वास्तविकता है, और इस भौतिक जगत में हम जो वास्तविक समझे वो स्वप्न है। क्योंकि ये भागवत की ही मतलब शिक्षा है कि ये भौतिक जगत में जब हम भौतिक आचरण करते हैं तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सभी हम जानते हैं, और बाकी जो बाह्यत कार्य जो हम कार्य करें वो कैसे है, स्वप्न के समान है। पर वृंदावन में स्वप्न भी जो है वो वास्तविक है। हम देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी पाद के जीवन में कि स्वयं कृष्ण उनके स्वप्न में प्रकट हुए। तो यही वो अनियोर विलेज है, यहाँ पर गुरु महाराज ने नाम भी दिया अनियोर विलेज। तो वहां पर वे कुंज में जाते हैं और गोपाल जी के विग्रह को जो है प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो कुंज में बहुत कठिनाइयों से तो भगवान को प्राप्त तो करते हैं, पर महा महा बलिष्ठ लोग एकत्र करिया पर्वत ऊपर गेली पूरी ठाकुर लैया। तो भगवान के विग्रह इतने आसान नहीं है भगवान को उठाना, जैसे हमेशा हम गिरिराज गोवर्धन जी को करुणावश कृपावश भगवान जो है, वैसे तो इंद्र ने जब बारिश गिराई थी तो भगवान खुद छत कृष्ण ने धारण किया था, पर यहाँ पर भगवान अलग लीला कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन 4 महीने के लिए कहाँ जाते हैं? मदन मोहन जी के पास। तो वैसे यहाँ पर गोपाल को जब उठाना है तो बलिष्ठ बलिष्ठ लोग जो है उठाकर गोपाल को कहाँ धारण करते हैं? गोवर्धन के ऊपर। और उसके बाद जिस तरह भगवान ने उपदेश दिया था श्रील माधवेंद्रपुरी पाद को कि मेरा इस तरह आप अभिषेक कीजिए, बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में जो हम देखेंगे गौर पूर्णिमा को, कि अलग अलग हम ना फलों के रस बनाते हैं, फिर चरणामृत, शहद, पंचामृत, ये सब भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसा सुंदर भगवान को अभिषेक करते हैं। बाद में ऐसा लिखा है कि भगवान को सॉफ्ट, कृष्ण इज सो सॉफ्ट, तो चिक्कन लिखा है शब्द, मतलब भगवान को पूरा तेल से मालिश करते हैं। ऐसी बहुत सुंदर भगवान की सेवा पूजा वहां पर होती है और भगवान का अभिषेक वहां पर किया जाता है। तो इसमें ये जो उत्सव है ना, एक दिन गोपाल जी प्राप्त हुए माधवेंद्रपुरी पाद को और दूसरे ही दिन बहुत बड़ा उत्सव हो गया। और छोटा बड़ा उत्सव नहीं, जैसे हम देखिए जन्माष्टमी का उत्सव हम कितने दिन तैयारी करते हैं, गौर पूर्णिमा आने वाली है कितना हम तैयारी करते हैं, जूस कौन बनाएगा, भोगा कौन बनाएगा, कैसे, और यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव एक दिन में ही हो गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक दिन उद्योग महोत्सव कैला गोपाल प्रभाव्य है अन्य ना जानीला। तो केवल भगवान और भगवान के भक्त ही जान सकते हैं, ये केवल गोपाल की कृपा से संभव हुआ है। तो जैसे ही गोपाल वृंदावन में प्रकट होते हैं तो बहुत ही भगवान का सुंदर स्वरूप देखकर चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान किस तरह अपनी खुद की व्यवस्था कर लेते हैं भगवान भक्तों के द्वारा। जैसे हम गोवर्धन इको विलेज या कोई भी मंदिर बनाने डोनेशंस चाहिए है ना, तो वैसे ही जैसे ही गोपाल प्राप्त होते हैं तो ये न्यूज सब जगह जाती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मथुरा के जो बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बहुत सोना इत्यादि दान करते हैं और बहुत कम समय में जो है बहुत सुंदर भगवान के लिए मंदिर का निर्माण होता है, भगवान के लिए डीटी किचन निर्माण होता है, बहुत सुंदर वहां पर भगवान की जो है सेवा पूजा प्रारंभ होती है। और ऐसे बहुत सुंदर भगवान तो प्रकट हो गए, गोपाल जी सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं, पर अभी और आगे वो लीला करने वाले हैं। तो ऐसा 2 साल का समय बीत जाता है और जो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद है वहीं पर है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब देखिए माधवेंद्रपुरी पाद के लिए भगवान प्रकट हुए, ब्रजवासी उसे इतना प्रेम, वृंदावन में है, साक्षात कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया है, खुद विराजमान है। और अभी देखो और माधवेंद्रपुरी पाद के स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही आए, मलयज चंदन लेप तब से जुड़ाए। अभी सेकेंड एग्जाम है माधवेंद्रपुरी पाद की ये, कि भगवान तो प्रकट हो गए माधवेंद्रपुरी पाद की इच्छा से, अभी सब ब्रजवासी गोपाल जी का दर्शन कर पा रहे हैं, पर अभी माधवेंद्रपुरी पाद के लिए अलग सेवा है। और भगवान क्या कहते हैं, आपने मुझे प्रकट तो कर लिया, मेरा इतना अच्छा अभिषेक भोग मंदिर बना लिया, फिर भी मेरे शरीर का जो ताप है वो नहीं गया। तो मलयज आन यार नीलाचल है ते अन्य है ते न है तुम्हें चल हत्वरिते बोले। और ऐसा नहीं है, ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन है भगवान का, क्या मुझे ताप हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, चंदन चाहिए, तो इतना बोल के भी भगवान छोड़ सकते हैं। कहते अन्य है ते न है तुम्ही चल त्वरिते, मतलब किसी कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद को चलना है। तो मैं जस्ट विचार कर रहा था कि देखिए मतलब कितना अच्छा जीवन था उनका, एस्टेब्लिश सेंटर, फॉलोवर्स, डिसाइपल्स, और अपना भजन भी चल रहा है, पर भगवान की सेवा के लिए वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे सबको छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर तुरंत विचार करते हैं कहाँ जाने के लिए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए। और परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि फ्लाइट पकड़ के जाना है या ट्रेन पकड़ के जाना है, कुछ ऑर्गेनाइज यात्रा है, कुछ नहीं, चल के जाना है। और क्या कर रहे हैं, चल के जाके दर्शन करके नहीं आना है, भगवान के लिए चंदन लाना है, और थोड़ा नहीं बहुत सारा चंदन, एक क्षण भी विचार नहीं करते। देखिए जो माधवेंद्रपुरी पाद है उनका जीवन कैसा है, आयाचित वृत्ति, खुद के लिए कुछ भी नहीं, कोई अगर कुछ ला के देगा तो ही प्राप्त करेंगे, पर जैसे भगवान के लिए आया तो तुरंत वो जो है जगन्नाथपुरी में निकलते हैं। स्वप्न देखी पूरी गोसाईर हैला प्रेमावेश प्रभु आज्ञा पाली बारे गैला पूर्व देश। बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना कुछ सोचे तुरंत वो कहां निकलते हैं, जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद अभी वृंदावन में थे, गोपाल उनको प्रकट हो गए, आपके बाजू में गोपाल जी भी है, उनका भजन स्थली भी है। तो अभी गोपाल को प्रकट करने के बाद जब भगवान इच्छा करते कि आपको जगन्नाथपुरी जाना है, तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जो है भी जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे हैं। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे हैं, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। और आते आते वो कहाँ पर आए, गोपीनाथ, उनका नाम उस समय केवल गोपीनाथ था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये जो श्रील गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर गोपीनाथ जी की सेवा होती थी रेमुना में। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कहते हैं कि जो गोपीनाथ जी के विग्रह है बहुत ही पुरातन है, स्वयं प्रभु श्री राम इनको प्रस्थापित किए, बहुत बड़ी कथा है। तो स्वयं, क्योंकि वह एक शिला में विग्रह है, आप गोपीनाथ जी को ड्रेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो कार्व्ड डिटीज नहीं है, इट्स अ सिंगल पीस। मतलब भगवान जो प्रकट किए, प्रभु रामचंद्र ने जो गोपीनाथ जी के विग्रह प्रकट किए, इसलिए गोपीनाथ को जो और दो विग्रह प्रकट हुए गोविंददेव और बाजू में है, पर ये जो गोपीनाथ है ये स्वयं प्रभु राम ने प्रकट किए हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की सेवा पूजा होती है। तो जैसे ही श्रील माधवेंद्रपुरी पाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वर्णन है कि वो देखते कि इतना सुंदर भगवान का सेवा हो रहा है, मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए सेवा को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आगे वर्णन आता है कि किस तरह संध्या का समय है और बहुत सुंदर गोपीनाथ जी के लिए जो है क्षीर प्रसाद जाता है। तो गोपीनाथ की जो खीर है वो पहले से ही प्रसिद्ध थी क्योंकि बहुत प्रेम से भक्त उनको चढ़ाते, तो ये बहुत ही विशेष भोग है। जैसे गिरिराज को लगलू लड्डू या फिर जगन्नाथ जी को खाजा, तो वैसे गोपीनाथ के जी को खीर प्रसाद वहां पर भोग लगता था। तो जैसे ही, ऐसा कहते कि 12 मटके थे, अभी भी शायद 12 मटके भगवान को भोग लगते हैं, जब प्रसाद मिलता है तो छोटे बड़े हो जाते हैं वो मटके, पर भगवान के लिए ऐसे 12 मटके प्रसाद के लिए जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पास देखते हैं कि बहुत सुंदर जो ये खीर प्रसाद है, भोग है, भगवान के लिए जा रहा है। तो उनके मन में क्या विचार आता है, आया चितक क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाए, स्वाद जानी ते तैछे क्षीरे गोपाल लगाए। तो अगर मुझे, क्योंकि मैं तो आयाचित हूँ, अभी कोई भगवान का भक्त जाके बोल सकते हैं भाई महाप्रसाद भोग लगने के बाद थोड़ा दे देना, मैं भी अपने भगवान के लिए बनाऊंगा, पर उनका नियम क्या है, आयाचित है, मतलब कोई अगर लाके देगा तो ही मुझे मिलेगा। और तो पहली बार आए रेमुना में, कोई उन्हें जानता भी नहीं और ऊपर से सन्यासी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कोई उन्हें खीर देगा। तो मन में सोचते हैं आयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाए, अगर छोड़ा मुझे अगर ये महाप्रसाद भगवान का मिल जाए तो मेरे गोपाल के लिए भी ना मैं ऐसा ही बनाऊंगा। पर तुरंत उनके मन में विचार आता है, आयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, आयाचित पाइले खान नहे उपवास, प्रेमामृते तृप्त क्षुदा तृष्णा नाही बाधे, क्षीर इच्छा है लेता है माने अपराधे। तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद आयाचित वृत्ति जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। मतलब कभी कभी हम जीवन में तपस्या करते हैं, निर्जल एकादशी या कोई भी उपवास व्रत करने का प्रयास करते हैं तो बहुत भगवान से, राधारानी से शक्ति मांगना पड़ता है। पर माधवेंद्रपुरी पाद का जीवन कैसे था, आयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, वो पूरी तरह भगवान के प्रेम में मत थे, उन्हें ऐसा विचार नहीं था अरे आज कोई लाएगा क्या तो मिले, तो आज का दिन तो गया, नहीं, ही वॉज कंप्लीटली इमर्स्ड। और जब कोई कुछ ला के देगा तो फिर भगवान की कृपा ही है। तो आयाचित पहले खाने नहे उपवास, अगर कोई कुछ देगा तो उपवास नहीं करते थे। पर जब ये विचार उनके मन में आता है कि मैं गोपाल के लिए खीर चाहता हूं, तो उनके मन में अपराध भावना उत्पन्न होती है। वे कहते हैं प्रेमातृप्ते शुद्ध शुद्ध तृष्णा नहीं बाधे, मैं प्रेम से इतना तृप्त हूं कि मुझे भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, क्षीर इच्छा है लेता है माने अपराध। पर भगवान की सेवा करने के लिए जो खीर खाने की इच्छा हुई उसे वो क्या कहते हैं, अपराध। क्यों ऐसा अपराध बोलोगा उन्होंने, आपको क्या लगता है क्यों अपराध है, ये भगवान की तो सेवा के लिए जा रहे थे, क्यों अपराध होने लगा? हाँ, क्योंकि भगवान को भोग लगने के पहले ही उन्होंने इच्छा कर लिया कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं मेरे गोपाल के लिए लगाऊंगा। तो ऐसे वो विचार करते हैं, और भगवान तो स्वतंत्र है, भक्तवत्सल है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। भगवान तो कभी भी जो है आदान प्रदान करने में पीछे नहीं रहते। इतना ही क्या, भगवान तो अपने भक्त के इतने ऋणी हो जाते हैं कि बोलते कि मैं भक्त के साथ आदान प्रदान करने की मेरी शक्ति ही नहीं है। कौन सा उदाहरण है, सुदामा का। जब सुदामा भगवान को कुछ पोहे देके जाते हैं तो भगवान विचार करते हैं मैं इसके साथ आदान प्रदान ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आदान प्रदान बराबरी वालों में होना चाहिए, बराबर है ना। तो सुदामा के पास जो कुछ नहीं था उसने किसी से भिक्षा मांगकर मेरे लाया, मतलब उसने ऐसा कुछ लाया जो उसके पास नहीं है वो उसने मुझे दिया। अभी मैं सुदामा को क्या दूं, सभी कुछ मेरा ही है, मैं किसको क्या मांगू, मतलब मैं सुदामा से आदान प्रदान नहीं कर सकता, ये भगवान का भाव है। इसलिए सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, जो भी करना है उसके पीछे पूरा महल बना दिया, सब दे दिया। तो भगवान गोपियों को भी कहते हैं न पा रहे हम, मैं आपसे आदान प्रदान नहीं कर सकता। वैसे ही अपने भक्त की इस करुणा में या प्रेम में भक्ति को देखकर भगवान भी रिझ जाते हैं। और देखो गोपीनाथ क्या लीला करते हैं, जो क्षीर भक्ष गोपीनाथ है वो अभी क्षीर चोर गोपीनाथ होने वाले हैं। है? तो देखिए कैसे आगे वर्णन आता है। तो यहाँ पर क्या है, ନିଜ କୃତ୍ୟ କରି ପୂଜାରୀ କରିଲା ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଠାକୁର ଆସି ବଲିଲା ବଚନ ଉଠ ପୂଜାରୀ କର ଦ୍ୱାର ବିମୋଚନ କ୍ଷୀର ଏକ ରାଖି ଅଛି ସନ୍ୟାସୀ କାରଣ ଓ ମେରେ ପୂଜାରୀ ଆପ ସୋଏ ହୋ ଉଠ ଯାଅ ଔର ମେନେ ଆପଣ ଭକ୍ତ କେ ଲିଏ ଯୋ ହୈ ଆପଣ ବାରହ କଟୋରୀ ଲଗାଇ ଥି ଭୋଗ ଲଗାତେ ସମୟ ନିକାଲତେ ସମୟ ଶାୟଦ ଚେକ୍ ନହିଁ କିଆ ତ ଗ୍ୟାରହ ହି ଆଇ ହୈ ଓ ଏକ କଟୋରୀ ଯୋ ହୈ ଭଗବାନ ଛିପା କେ ରଖେ କହତେ ହେ କୃପା କରକେ ଆପ ये जो खीर की कटोरी है आप इसको लीजिए और एक सन्यासी आए हैं उनको आप दीजिए है। तो पुजारी भी को देखो क्योंकि एक भक्त अगर इतने शुद्ध परम भक्त आ गए पुजारी को भी भगवान स्वप्न में आके दर्शन दी दे। और ये जो पुजारी है इस क्षीर को लेकर मंदिर के बाहर आता है। शीर लह ये यार नाम माधव पुरी तोमा लागे गोपीनाथ शीर कैला चूरी आते है मंदिर के बाहर और ढूंढते अरे कौन है ये माधव माधवेंद्रपुरी कौन है इनके लिए गोपीनाथ स्वयं जो है खीर को चोरी करके रखे हैं। तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद इस प्रसाद को जो है ग्रहण करते हैं और उनके हृदय में और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वो सोचते हैं ठाकुर मोरे क्षीर दीला लोक सब सुनी दीने लोक का भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। देखिए मिशन क्या है चंदन लाने का। वृंदावन में गोपाल जी को छोड़ के आए गोपाल की सेवा करने के लिए यहाँ पर दूसरी परीक्षा। गोपीनाथ खुद स्वयं शीर चोरी करके रखे हैं वहीं पर रहते तो सभी लोग उनकी बाबा जी या शुद्ध भक्त करके सेवा करते थे वहीं पर रह सकते थे। बोलते नहीं अभी सबको जैसे ही पता चलेगा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तुरंत वो स्थान को त्याग देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसमें और एक सुंदर बात यह है कि जब श्री माधवेंद्रपुरी पाद उस खीर को स्वीकार करते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं खीर को तो पूरा खाते ही है बाद में उनके वस्त्र में जो है वो खीर के बर्तन को भी बांध लेते हैं। ठिकरी शब्द यूज किया है छोटे छोटे टुकड़े उन बर्तन के करते हैं और एक एक टुकड़े को भी वो प्राशन करते हैं। तो देखिए कितना प्रेम है भगवान से क्यों कि गोपीनाथ ने खुद निकाला हुआ वो खीर का बर्तन है। तो ऐसे सुंदर श्री माधवेंद्रपुरी पाद के लिए भगवान जो है खीर को चोरी करते हैं। तो भक्त जो है श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने इस भगवान की लीला को स्वीकार मतलब जो प्रशंसा है उसको स्वीकार नहीं किया पर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भक्त को भगवान की भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो स्वीकार करेगा अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो जो प्रतिष्ठा है मान सम्मान है हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है क्यों हमें अहंकार आ सकता है पर भगवान की सेवा में तो लगा सकते हैं है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे माधवेंद्रपुरी पाद अभी रेमुना से जाते हैं कहाँ पर जगन्नाथपुरी तो ऐसा कहते हैं श्री माधवेंद्रपुरी पाद जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले उनके जो गौरव है वो पहुंच जाता है और तो माधवेंद्रपुरी पाद यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं क्योंकि देखो अगर आप मुझे सही में मानते हो कि मैं भगवान का महान भक्त हूँ तो मुझे मेरे भगवान गोपाल की सेवा में सहायता कीजिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं राजपत्र सने यार परिचय तारे मार्ग कर्पूर चंदन कौरी ला संचय। तो इस भगवान की लीला को वो स्वीकार करते हैं जीवन में और सेवा में उपयोग करते हैं। तो जैसे जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनकी प्रसिद्धि की वजह से लोग उन्हें उनके पास आते हुए बताते देखो मुझे ऐसा चंदन चाहिए। तो देखिए इतना आदान प्रदान भगवान करते हैं केवल चंदन नहीं चंदन कर्पूर एक सेवक साथ में एक ब्राह्मण और साथ में सारा टोल टैक्स पे करने के लिए। तो परम पूज्य राजनाथ महाराज कहते हैं कि देखो भक्त को कैसे सेवा करनी पड़ती है। बहुत बार लोग सोचेंगे ब्रज में जाके भजन करना कितना अच्छा है पर महाराज के शब्द है कि भगवान का मंदिर बनाना कुछ कागज पत्र परमिशन लेना तो बोलते ये सब भी भक्त की सेवा है ना तो ये कौन करेगा। तो ये सब कार्य माधवेंद्रपुरी पाद खुद कर रहे हैं सब परमिशन ले रहे हैं सब राजपत्र को साथ में ले जा रहे हैं क्योंकि मुगलों का राज्य था इतने सारे प्रदेश से भगवान के लिए चंदन लाना है तो सारे पत्र जो है परमिशन लेटर साथ में लेके जो है लेके आ रहे हैं। महाराज कहते हैं रास्ता इतना आसान नहीं क्योंकि जंगलों से होके आना है और साथ में मूल्यवान चंदन है उसको भी बचाना है मुगलों से बचाना है और भगवान की सेवा के लिए आना है। ये सब कष्ट सहन कर माधवेंद्रपुरी पाद चंदन लेके आते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ समय भी हो रहा है। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं चंदन को लेते हैं और वापस आते हैं। तो आते आते वापस बीच में क्या आएगा जिस रूट में जाएंगे तो वो स्थान वापस आएगा। तो वापस कहाँ आते हैं अभी रेमुना में और रेमुना गोपाल के पास नहीं आए अभी तक रेमुना में आते हैं जहाँ पर श्री गोपीनाथ जी है क्षीर चोर गोपीनाथ। पहले कौन थे क्षीरभक्ष गोपीनाथ अभी कौन है क्षीर चोर गोपीनाथ। तो अभी यहाँ पर क्षीर चोर गोपीनाथ के पास आते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं पुजारी अपने आप स्वयं उनको खीर ला के देते हैं खीर को प्राप्त भी करते हैं और अभी वापस भगवान के स्वप्न में आते हैं और भगवान क्या कहते हैं गोपाला आसिया कहे सुन हे माधव कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। कर्पूर सहित घसीये सब चंदन, गोपीनाथेर अंगे नित्य कर हलेपन। बोलते हैं, हे माधवेंद्र पुरीपाद, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। आप जो चंदन कर्पूर यहाँ पर लेके आए हैं, वो यहीं पर अभी आप चंदन को निकालिए और यहीं पर चंदन यात्रा कीजिए। मतलब क्या, आप गोपीनाथ को ही चंदन अर्पण कीजिए, क्योंकि मैं और गोपाल जो है अभिन्न हूँ और मैं आपकी सेवा यहीं पर स्वीकार करता हूँ। और वो जो चंदन है, फिर खीरचोर गोपीनाथ जी को वहाँ पर चंदन लगाया जाता है और वहाँ पर बहुत सुंदर गोपीनाथ जी की सेवा पूजा होती है। तो यहाँ पर मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर नहीं रुकते और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर नहीं रुकते। इस कथा को आगे भगवान, क्योंकि आज माधवेंद्र पुरीपाद का तिरोभाव है, उनका गौरव करना चाहिए, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्र पुरीपाद को कैसे गौरवान्वित करते हैं, आगे श्लोक में आएगा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। बोलते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, माधवेंद्र पुरीपाद के जैसे भाग्यवान कौन होगा? क्यों? यार लागी गोपीनाथ शिर कैला चुरी, अतएव नाम हैल शिर चोरा हरी। तो माधवेंद्र पुरीपाद इतने महान है, ऐसा कौन महान भक्त होगा कि भगवान उनके लिए स्वयं खीर चोर के रखे हैं। इतना ही नहीं तो भगवान साक्षात उनके 3 बार स्वप्न में भी आए, साक्षात स्वयं दूध लेके भी भगवान उनके लिए प्रकट हुए, तो ऐसा कौन भक्त होगा? भगवान देखो कैसे श्री माधवेंद्र पुरी पाद की सेवा को कैसे गौरव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं, म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन अनिले जंजाल, पूरी दुख पाबे हा जानिय गोपाल। बोलते कि पता है मेरा जो भक्त है माधवेंद्र पुरी पाद, मेरे कहने पर चंदन तो लेके आया पर उसे दुख हो रहा है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महादयामय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन परिभक्त श्रम करील सफल। और भगवान इतने परम दयालु है, बोलते मेरे भक्त को और भी और कष्ट नहीं देना है, तो वही पर ग्रेमुना में ही जो है चंदन सेवा को जो है स्वीकार करते हैं। अपने भक्त की तकलीफ को जानकर, भक्त ने तकलीफ प्रकट नहीं की है। माधवेंद्र पुरीपाद की सेवा के बारे में कहते हैं तो कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार। आप मेरे पीछे श्लोक को दोहरा सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न अधीन करे विचार, निज दुख विघ्न अधीन करे विचार। ये एक गुरु महाराज से एक विषय सुना कि कभी कभी हम भगवान की सेवा करते हैं तो शायद कुछ दुख की अनुभूति हो, क्योंकि भौतिक शरीर है, कष्ट तो मिलेंगे ही, और इस भौतिक संसार में है तो त्रिविध ताप है, 3 गुण है, तो भगवान की सेवा करते समय शायद हमें दुख होंगे। और कभी कभी हमें लगा रहे भगवान मेरे दुख को देख रहा है कि नहीं, मैं तो केवल सेवा ही कर रहा हूँ। नहीं, भगवान को भक्त की जो है और भी चिंता है। केवल हमारे शुद्धिकरण करने के लिए, हमें भगवान अपने पास लाने के लिए इन सब परिस्थितियों से जाने देते हैं। और यहाँ पर प्रगाढ़ प्रेम रे स्वभाव आचार, जो प्रगाढ़ प्रेम था माधवेंद्र पुरी का, क्या आचरण, क्या उनका स्वभाव है, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। खुद को जितनी भी तकलीफ हुई उसके बारे में कभी उन्होंने जो है विचार नहीं किया। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा अनिला, आनंद बाड़िला मणे दुख ना गणिला। कि इतना परिश्रम करके चंदन रेमुणा लेके आए तो उन्होंने कभी ऐसा दुख नहीं व्यक्त हुआ कि यहाँ पर ये तकलीफ हो गई, इतना हेवी था या इतना मुझे दुख सहना पड़ा। नहीं, आनंद बाड़िला मणे, क्यों? कि भगवान को जो ताप हो रहा था मैं उसको शांत कर पाया, और भगवान तो इतने महान है कि यहीं पे चंदन स्वीकार कर लिया, तो वे वो आनंद हो गए। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे लिए कहते हैं, यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, भुजे त्यो आमा सबार नाही अधिकार। एक्चुअली इन भगवान की लीलाओं को सुनना और समझना इतना आसान नहीं है बिना भक्ति के। कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद कहते हैं, भुजे त्यो आमा सबार नाही अधिकार। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कह सकते हैं तो हमारी तो केवल गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और वैष्णव की कृपा से हम ये जान सकते हैं। और इस तरह बहुत सुंदर भगवान की सेवा श्रील माधवेंद्र पुरीपाद कहते हैं। और आज माधवेंद्र पुरीपाद का तिरुभाव दिन है, तो उनका चिंतन भगवान की सेवा में ही हुआ। बहुत सुंदर उनका वर्णन है कि किस तरह वो भगवान से जो है विरह का अनुभव करते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान तो प्रेम रस निर्यास करी दे आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करी थे प्रचारण। इस राधा रानी के प्रेम को, या वीरभाव को प्रकट करने के लिए आए हैं, पर इसका अंकुर कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। तो भगवान भी परंपरा में इसको स्वीकार किए हैं, तो उनके हृदय में ही है, राधारानी के भाव को ही लेके आए हैं। पर ऐसा कहते हैं श्री माधवेंद्र पुरीपाद इनके शिष्य कौन हुए? श्री ईश्वरपुरी। और जब ईश्वरपुरी से जब श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तभी इस व्रज भक्ति का जो है प्रचार प्रसार या प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं, मैंने कहाँ से लिया है अंकुर? श्री माधवेंद्र पुरीपाद परंपरा से मैंने इसको स्वीकार किया है। तो श्री माधवेंद्र पुरीपाद अपना पूरा समय भगवान की लीला कथा श्रवण करने में, ऐसा कहते हैं कि वो स्वयं भजन में ही भजन में ही अपना समय गवाते थे। भक्त भगवान की कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन में बहुत सुंदर अनेक अनेक लीला है उनकी, जैसे नित्यानंद प्रभु से माधवेंद्र पुरीपाद का मिलन, और क्या वो आदान प्रदान भक्तों के बीच में, केवल कृष्ण के ही स्मरण करते हैं, धूल में लौट जाते हैं और बहुत प्रेम का अनुभव करते हैं। तो बहुत ही प्रेमी भक्त है माधवेंद्र पुरीपाद। तो उनका एक श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी उसको गाएंगे, और वो उनकी प्रार्थना है भगवान को, क्योंकि ये जो विरह भाव है वो गोपियों का भी था, श्रीमती राधा रानी कि एक युग त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, हे भगवान आपका एक क्षण का वियोग त्रुटि युगायते अनेक युगों के समान है, उसी तरह का जो भाव है श्री माधवेंद्र पुरीपाद का है। तो वे कहते हैं, मुझे ये श्लोक इतना अच्छे से बोलना नहीं आता, बड़ा प्रयास कीजिए मेरे पीछे दोहराने का। अय दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक से हृदयं त्वदलोक कातरम् दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्लोक को पठन करते हैं, रुदन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है अय दीन दयार्द्रनाथ, ये उनका भाव है श्री माधवेंद्र पुरीपाद का, जब वो इस धरातल से अपनी लीला को समाप्त कर भगवत धाम जा रहे हैं। अय दीन दयार्द्रनाथ है, ए दीन दयाल भगवान मथुरा नाथ, हे मथुरा के नाथ कदावलोक्य से, कभी आप मेरा स्वीकार करेंगे। क्यों? हृदयम त्वद लोक कातरम, क्योंकि आपके वियोग से जय कातरम, मेरे हृदय में जो है बहुत वेदना हो रही है, दुख हो रही है। दयित भ्राम्यति किम करोम्यम, हे भगवान अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मुझे आपसे विरह हो रहा है, हे भगवान आप मुझे कब दर्शन दोगे? तो इस भाव के साथ श्री माधवेंद्र पुरीपाद जो है इस अपनी लीला को यहाँ पर प्रकट किए हैं। तो बहुत ही परम सौभाग्य है हमारा कि हम वृंदावन धाम में बैठकर उन्हीं लीला स्थलियों का स्मरण कर, बहुत बार वैसे तो धाम तो श्रवण से ही आ जाता है, पर क्या अगर इस तरह का वातावरण निर्माण हो जहाँ पर वृंदावन स्वयं है, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी की बैठक है, तो ऐसी कृपा आशीर्वाद श्री प्रभुपाद गुरु महाराज आचार्यों से प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम माधवेंद्र पुरीपाद के भी जीवन से यही सीख सकते हैं कि श्री गोविंद देव जी क्यों प्रकट हुए श्री रूप गोस्वामी पाद के लिए, श्री मदन मोहन जी किनके लिए प्रकट हुए? श्री सनातन गोस्वामी पाद के लिए। ऐसे अद्वैताचार्य जी को प्राप्त हुए, बाद में सनातन गोस्वामी जी से सेवा स्वीकार की है। श्री गोपीनाथ जी किनके लिए प्रकट हुए वृंदावन में? मधु पंडित जी को प्रकट हुए। तो यहां से हम एक परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि भगवान केवल भक्तों के द्वारा ही प्रकट हो सकते हैं। तो आज हम गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं गोपाल अभी वृंदावन में नहीं है, गोपाल जी की सेवा कहाँ हो रही है अभी? श्री नाथ द्वारा में, जो नाथ द्वारा में हजारों लाखों लोग अभी दर्शन कर पा रहे हैं, भक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों? सभी श्रेय श्री माधवेंद्र पुरीपाद। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं निरीक्षण कवे आवे माधव अभी करें निरीक्षण, भगवान उनकी राह देखे, माधवेंद्र पुरीपाद इनकी भक्ति से गोपाल जी प्रकट हुए और अभी हजारों लाखों लोग जो हैं भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो आइए हम सभी श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी से प्रार्थना करें। ऐसा कहते हैं कि जब भी आचार्यों का तिरोभाव आविर्भाव तिथि है, विशेष रूप से वो बहुत ही दयावान है और वे इस प्रेम भक्ति के व्रज भक्ति के अंकुरित है, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वयं गौरवान्वित है, तो हम सभी उनके चरणों में प्रार्थना करें। हे श्री माधवेंद्र पुरीपाद, कृपया आप भी हमें कुछ लवमात्र भक्ति जो आपके हृदय में थी हमारे हृदय में भी आए, और जिस तरह आपने जो है भगवान की सेवा के निज दुख विघ्न आदि न करे विचार, तो विशेष करके मेरे लिए साधक जीवन में तो बहुत कष्टदायी है, पर अगर हम इन आचार्यों के से हमें शक्ति प्राप्त होगी तो हम भी जो है हमारी सेवा को अच्छी से तरह से कर कर गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर सकेंगे और भगवान की सेवा कर सकेंगे। जय श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, श्री गिरधारी गोपाल की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके क्षमा कीजिए, थोड़ा बहुत कुछ सुना पड़ा, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया तो कुछ गलती हो गया तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अभय गौरंग प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद।